नमस्कार भारत, 5 मई दिन रविवार, मैं हूं वात्सल्य राय। फलस्तीनी अधिकारियों का दावा, गजा में इजरायली हमले में बच्ची समेत 4 की मौत। इसराइल ने कहा चरमपंथियों के हमले के जवाब में कार्रवाई। भारत प्रशासित कश्मीर के अनंतनाग में संदिग्ध चरमपंथियों ने की बीजेपी नेता की हत्या।
संदिग्ध चरमपंथी मीर के घर में घुसे थे और उन पर गोलियां चलाई, हॉस्पिटल ले जाते उनकी मौत हो गई।
और राजनीति की पिच पर उतरे पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर से सुनवाएंगे खास बातचीत।
जो ये बात करें कि मैं डिबेट से डर गया, डरा तो मैं पाकिस्तान से भी नहीं, तो इनकी डिबेट से क्या डरूंगा।
खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सिंधुवासिनी से सुनिए। फलस्तीन के अधिकारियों का कहना है कि गजा पट्टी पर हुए इसराइली हमलों में 14 महीने की एक बच्ची और उसकी मां समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। वहीं इसराइल का कहना है कि उसने फलस्तीनी चरमपंथियों के हमले के बाद ये जवाबी सैन्य कार्रवाई की है। उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया के मुताबिक देश के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन रॉकेट लॉन्चर और दूसरे हथियारों के परीक्षण पर नज़र बनाए हुए थे। ये रिपोर्ट उत्तर कोरिया की ओर से मध्यम दूरी के हथियारों के परीक्षण की खबर के एक दिन बाद आई है। माना जा रहा है कि बीते 1.5 साल में कोरिया की ओर से किया गया ये पहला परीक्षण है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो मानते हैं कि किम जोंग उन अच्छे रिश्तों की राह में बाधा नहीं पहुँचाएंगे। सूडान में सुरक्षा बलों ने एक मिलिट्री बेस के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों को तितर बितर करने के लिए गोलियों और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। सरकारी मीडिया के अनुसार सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसा की स्थिति उस वक्त पैदा हो गई जब लगभग 5,000 लोग एक साथ मार्च करने लगे। स्थानीय गवर्नर का कहना है कि हिंसा में 4 सैनिक और अर्धसैनिक बलों के जवान घायल हुए हैं। गवर्नर ने घायल नागरिकों की संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। सूडान की राजधानी खार्तूम में सैन्य मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन आयोजित करने वालों का कहना है कि देश में अब भी परोक्ष रूप से पूर्व राष्ट्रपति उमर अल बशीर का ही शासन चल रहा है। प्रदर्शनकारियों और सूडानी सेना के बीच गतिरोध खत्म करने की कोशिशों में लगी स्वतंत्र मध्यस्थ फदवा अब्दुल रहमान अली तहा ने बीबीसी को बताया कि नागरिकों और सेना दोनों को साथ मिलाकर शासन चलाने की कोशिश की जा रही है। सेना में एक प्रस्ताव पर सहमति बन गई है। पहले वो सेना के दबदबे वाली काउंसिल के लिए जोर दे रहे थे, लेकिन अब वो मान गए हैं। एक सुप्रीम काउंसिल बनाने पर सहमति बन गई है जिसमें नागरिक बहुसंख्यक होंगे। मुझे लगता है कि ये एक अच्छी डील है। ये थे मध्यस्थ फदवा अब्दुल रहमान के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अबुजा के आर्च बिशप ने नाइजीरिया सरकार से युवाओं के यूरोप पलायन रोकने के लिए उचित कदम उठाने और देश में हालात सुधारने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक नाइजीरिया की हजारों लड़कियों को हर साल नौकरी के नाम पर मानव तस्करी का शिकार बनाया जाता है। इनमें से कईयों को सेक्स वर्क में धकेल दिया जाता है। कार्डिनल ओनायेकन ने कहा कि जब वो नाइजीरिया की लड़कियों को रोम और दूसरे शहरों की गलियों में देखते हैं तो उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। उन्होंने नाइजीरिया की सरकार की आलोचना की और कहा कि सरकारी अधिकारी सिर्फ अपने बंगले बनाने और दुनिया में घूमने पर ध्यान दे रहे हैं।
I'm moving through the streets of Rome, Milan, Naples, and I see my daughters on the street on sale.
मैं रोम, मिलान और निपल्स की गलियों में अपनी बेटियों को बिकते हुए देखता हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ। आप उनसे बात भी नहीं कर सकती क्योंकि उन्हें गांवों से बिना पढ़ाए लिखाए उठा लिया जाता है। वो सिर्फ इतना जानती हैं कि उन्हें इटली की गलियों में काम करना है। मैं शर्मिंदा हूँ। ये थे अबुजा के आर्च बिशप के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई सोशल मीडिया कंपनियों की दक्षिणपंथी व्यक्तियों को अपनी वेबसाइट से बैन करने के फैसले की आलोचना की है। ट्रंप ने इस बारे में ट्वीट किया है और कंपनियों के इस कदम को बहुत अनुचित बताया है। फेसबुक ने गुरुवार को कई लोगों की प्रोफाइल को खतरनाक बताते हुए अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया था। ट्रंप ने कहा कि उनका प्रशासन सोशल मीडिया कंपनियों के इस रवैये की जाँच कर रहा है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत, आपके साथ मैं हूं वात्सल्य राय। आप ये कार्यक्रम bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं लाइव। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती की खबरों के बीच एक सवाल चिंता की वजह बन रहा है, वो ये कि क्या चीनी युवक पाकिस्तान की ईसाई लड़कियों से किसी खास मकसद के लिए शादी कर रहे हैं। नमस्कार भारत में सुनवाएंगे इस सवाल का जवाब देने वाली रिपोर्ट। बात महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हुए हमले की भी होगी, लेकिन शुरुआत गजा में बने तनाव की खबर से। फलिस्तीन के अधिकारियों का कहना है कि इसराइल की ओर से गजा में किए गए हवाई हमलों में एक बच्ची समेत 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं इसराइल की सेना का दावा है कि गजा से चरमपंथियों ने इसराइली क्षेत्र में 200 से ज्यादा रॉकेट दागे। इसराइल ने इसके जवाब में ही कार्रवाई की। पूरी रिपोर्ट सुनिए सिंधु वासनी से।
धमाकों की ये आवाज गजा पट्टी से आ रही है, जहां इसराइल की ओर से हुए हवाई हमलों में कम से कम 4 फलस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई है। मरने वालों में 14 महीने की एक बच्ची और उसकी मां भी शामिल हैं। इसके अलावा कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। वहीं इसराइल की सेना के मुताबिक गजा पट्टी से फलस्तीनी चरमपंथियों ने इसराइली क्षेत्र में 200 से ज्यादा रॉकेट दागे, जिसके जवाब में सेना ने फलस्तीनी क्षेत्र में हवाई हमले किए और टैंक के जरिए गोले दागे। इसराइली सेना का कहना है कि गजा की ओर से हुए रॉकेट हमलों की चपेट में आकर 3 इसराइली नागरिक घायल हो गए हैं। वहीं तुर्की की सरकारी समाचार एजेंसी का कहना है कि इसराइल के हमलों में गजा स्थित तुर्की का एक कार्यालय भी नष्ट हो गया है। एक वीडियो फुटेज में इस इमारत का मलबा गिरते हुए देखा जा सकता है। हालांकि हमले से पहले ऑफिस में काम करने वालों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। तुर्की के विदेश मंत्री ने इन हमलों को इसराइल की बेकाबू आक्रामकता बताया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र के राजदूत निकोलाई मलादेनोव ने हिंसा को तत्काल रोकने की अपील की है। इसराइल के एक किसान ओफर लिबरमैन के घर को फलस्तीनी हमले की वजह से काफी नुकसान पहुंचा है। लिबरमैन ने कहा कि उन्हें फलस्तीन के हालिया हमलों से बिल्कुल हैरानी नहीं हुई।
We already knew that the Hamas want, you know, to react.
हमें पहले से पता था कि हमास फलस्तीनी नागरिकों की मौत का जवाब देगा। हम जानते थे कि कुछ होगा। हमें वक्त और जगह तो नहीं मालूम थी, लेकिन ये मालूम था कि कुछ होगा जरूर। और आप देखिए 10:15 के लगभग ये हो गया। वो पूरे इलाके में गोलीबारी करने लगे थे। ये थी इसराइल के एक किसान के शब्द। इससे पहले शुक्रवार को हुए एक हमले में इसराइल के 2 सैनिक घायल हो गए थे। इसके जवाब में की गई कार्रवाई में फलस्तीन के 4 लोगों की मौत हुई। इनमें से 2 फलस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास के लड़ाके थे। इसराइल में अप्रैल में हुए चुनाव के बाद दोनों ओर संघर्ष विराम की स्थिति थी, लेकिन फिलहाल इस हिंसा से तनाव बढ़ गया है।
रिपोर्ट सुना रही थी सिंधु वासनी। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती इन दिनों दुनिया में मशहूर है। इन दो देशों की दोस्ती इनके नागरिकों के बीच रिश्तेदारी की राह भी तैयार कर रही है, लेकिन रिश्ते की इस राह पर कुछ सवाल भी पूछे जाने लगे हैं। सवाल ये कि क्या चीन के युवक पाकिस्तान की ईसाई लड़कियों से देह व्यापार के लिए शादी कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश की है बीबीसी संवाददाता सहर बलोच ने। लाहौर से आई उनकी रिपोर्ट का आवाज दी है हरिता कांडपाल ने।
संयुक्त राष्ट्र और गैर सरकारी संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने हाल में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें पाकिस्तान से लड़कियों को चीन ले जाने की घटनाओं पर चिंता जाहिर की गई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सामने आए ये मामले एशिया के 5 और देशों से मिलते जुलते हैं। इसी हवाले से पाकिस्तान में मानवाधिकारों पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का कहना है कि पिछले एक साल से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में चीनी लोग शादी के लिए आ रहे हैं और लड़कियों को शादी करके चीन ले जा रहे हैं, जिसका मकसद वैवाहिक संबंध कायम करना नहीं है, बल्कि कथित तौर पर ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देह व्यापार का एक अहम जरिया है। इसी सिलसिले में बीबीसी ने फैसलाबाद में एक ऐसी लड़की से बात की जिसकी एक चीनी लड़के से शादी करा दी गई थी। उन्होंने हमें क्या बताया, सुनिए उन्हीं की जुबानी।
मैं फैसलाबाद से हूँ, एज मेरी 19 साल है और हम लोग शादी पे गए थे। रिलेटिव में शादी थी, कजन की बेटी की थी, तो वहाँ पे चाइनीज थे, उसकी भी चाइनीज शादी थी, अभी वो चाइना चले गई है। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे पसंद किया था, फिर उन्होंने रिलेटिव में से नंबर लिया हमारे घर का। लास्ट शादी मेरी थी, पहले 7 लड़कियों की हो चुकी थी। एक उन्होंने घर लिया हुआ था जहाँ पे लड़कियाँ और लड़के रहते थे, और वह टोटल उन्होंने 3 घर लिए हुए थे। वहाँ पे सब चाइनीज ही चाइनीज थे। मोबाइल के थ्रू गूगल ट्रांसलेशन कभी सही होता था, नहीं तो चाइनीज टीचर था, हमारी क्लास होती थी सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक, तो तब मैंने कुछ नहीं बोला। जब मुझे पता चला ना वो सही नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, तो मैंने जब उसे बोला फिर वो मुझे ब्लैकमेल करने लग गया। मुझे कहता था जो मैंने हॉल पे पैसे लगाए हैं मैं वो लूँगा, मैं तुम लोगों के खिलाफ रिपोर्ट करवाऊँगा, तुम लोगों ने चाइनीज़ को चीट किया है। फिर बड़ी मुश्किल से वो मेरे घर वाले मुझे ले गए, फिर मैं वापस नहीं आई। और मुझे ये कि दूसरी लड़कियाँ सेव रहे हैं, इनको नहीं पता वो बस शादी ना करें।
इरफान मुस्तफ़ा पेशे से शिक्षक हैं और पिछले 4 महीने से पंजाब के विभिन्न इलाकों में करीब 10 शादियां करा चुके हैं। इरफान ने चीन में लड़कियों से देह व्यापार की खबरों का खंडन करते हुए कहा कि ये मीडिया की फैलाई हुई बातें हैं और सच्चाई ये नहीं है।
मैं जिनसे काम कर रहा हूँ वो प्रॉपर उनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, जो गवर्नमेंट ने उनको अलाउ किया है। आपका चैनल है तो गवर्नमेंट आपको अलाउ किया तो आप चैनल पर आकर बैठे हैं ना, तो कोई बंदा भी आपसे काम कर रहा है तो उसको पता है कि इसके पीछे गवर्नमेंट की सपोर्ट मौजूद है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि चैनल यहाँ पे आए हों और गवर्नमेंट की सपोर्ट ना उनको हो।
लेकिन हाल ही में लाहौर के अलग अलग इलाकों में रहने वाली 8 लड़कियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इसमें कहा गया है कि उन्हें बताया गया कि लड़का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में काम करता है, लेकिन चीन जाने के बाद पता चला कि लड़का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में काम नहीं करता है। सीपेक से पाकिस्तान को काफी उम्मीदें हैं, चीन ने इस प्रोजेक्ट में भारी निवेश किया है, इसे पाकिस्तान चीन दोस्ती का एक और आयाम बताया जाता है, लेकिन हालिया घटनाओं और उससे जुड़ी शिकायतों को नजरअंदाज किया जा रहा है। आंकड़े बताते हैं कि चीन में मर्दों की संख्या औरतों से ज्यादा है, यही वजह है कि चीन के मर्द शादी के लिए दूसरे देशों का रुख कर रहे हैं, औरतों की तस्करी करने वाले गिरोह इसका फायदा उठा रहे हैं। सहर बलोच, BBC लाहौर।
अगली खबर भारत प्रशासित कश्मीर से। कश्मीर के अनंतनाग जिले में कल देर रात संदिग्ध चरमपंथियों ने बीजेपी नेता गुल मोहम्मद मीर पर हमला कर दिया। बुरी तरह घायल मीर की मौत हो गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मैंने बात की श्रीनगर में मौजूद अपने सहयोगी माजिद जहांगीर से।
बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं से बात हुई और उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि गुलाम मोहम्मद मीर पिछले 14 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ एसोसिएट थे और अभी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के ये वाइस प्रेसिडेंट भी थे और 2 बार ये चुनाव लड़ चुके हैं, 2008 में और 2014 में विधानसभा के चुनाव, और दोनों बार हार गए। ये पहली पॉलिटिकल किलिंग है इन चुनावों के दौरान कश्मीर में इस तरह से किसी नेता को जब मारा गया हो, और ये घटना सैटरडे की रात को यानी कल रात देर 10 बजे के करीब पेश आई जब कुछ संदिग्ध चरमपंथी मीर के घर में घुसे थे और उन पर गोलियां चलाई, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनको हॉस्पिटल ले जाते उनकी मौत हो गई।
क्या किसी ने इसकी कोई जिम्मेदारी ली है हमले की, और पुलिस का इस मामले में क्या कहना है, कोई गिरफ्तारी हुई है?
देखिए, अभी पुलिस का हमने एक प्रेस रिलीज छोटा सा पढ़ा है और पुलिस ने उसमें सिर्फ कहा है कि टेररिस्ट ने एक इंडिविजुअल पर गोलियां चलाई जिसके बाद उनकी डेथ हो गई है, और पुलिस ने यह भी कहा है अपने स्टेटमेंट में इस मामले में जो है इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की गई है।
अनंतनाग जिले में तो चुनाव भी हो रहे हैं, क्या उसको लेकर कुछ असर आप देखते हैं?
जो साउथ कश्मीर है वहाँ 3 फेजेस में चुनाव हो रहे हैं और 2 फेज वहाँ पे हो चुके हैं और कल एक और फेज के लिए वहाँ वोटिंग होनी है। वहाँ पहले ही काफी कम वोटर टर्नआउट रिकॉर्ड किया गया है और इस पॉलिटिकल किलिंग से अपरेंटली ऐसा ही लग रहा है कि उस वोटर टर्न में और भी कमी आ सकती है, क्योंकि आम लोगों में इससे जरूर एक खौफ पैदा होगा।
जानकारी दे रहे थे माजिद जहांगीर। उधर केरल में मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी ने अपने संस्थानों में लड़कियों के नकाब पहनने पर रोक लगा दी है। इस फैसले को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। वहीं सोसाइटी के अधिकारियों का कहना है कि इस फैसले के बाद उन्हें धमकियां मिल रही हैं। सुनिए इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
सामान्य तौर पर देखें तो जब एक मुस्लिम संस्था अपने स्कूल और कॉलेज में नकाब पर रोक लगाती है तो हैरानी होती है, लेकिन इस रोक लगाने पर केरला के मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी या MES के चेयरमैन डॉक्टर फजल गफूर को कोई संकोच नहीं हुआ। उन्होंने BBC से बातचीत में साफ साफ बता दिया कि महिला विद्यार्थी उनके करीब 100 शिक्षा संस्थानों में नकाब नहीं पहन सकती। उन्होंने कहा, ये जो फैसला हुआ उसका श्रीलंका में हुए हमले से कोई संबंध नहीं है। हमारा सीधा साधा फैसला है कि महिला बच्चे हमारे शिक्षा संस्थानों में नकाब नहीं पहनेंगे। हिजाब के खिलाफ हमें कुछ नहीं कहना है, क्योंकि वो तो एक लिबास है जो आजकल फैशन बन गया है। ये थे डॉक्टर फजल गफूर के शब्द। डॉक्टर फजल गफूर ने पिछले साल ही दो लड़कियों को नकाब की वजह से दाखिला देने से इनकार कर दिया था, लेकिन दाखिला सुपरवाइजरी समिति ने उनसे कहा कि वह कानूनी निर्णय नहीं होगा। इसीलिए इस साल वो दाखिला होने के 1.5 महीने पहले ही प्रॉस्पेक्टस में ये बात समझा दी है कि उनके संस्थानों में नकाब पर पाबंदी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि केरला हाई कोर्ट ने पिछले साल एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। इस फैसले में कोर्ट ने यूनिफॉर्म के मामले में शिक्षा संस्थानों को समर्थन किया था, लेकिन डॉक्टर गफूर के फैसले पर समस्त केरला जमायतुल उलेमा के प्रवक्ता और वकील तईब हुदवी ने कहा,
बच्ची ये सब कुछ पढ़ने के लिए चाहती है उसको रोकना नहीं, मैनेजमेंट और अथॉरिटी को कोई लीगली वैलिडिटी नहीं है और लीगली उनको ये पावर नहीं है, ये हमारा।
तईब हुदवी का मानना है कि इस्लाम में एक महिला को अजनबियों से हिफाजत के लिए नकाब पहनना जरूरी है। तो क्या इस्लाम में बुरखा या नकाब महिलाओं को पहनना जरूरी है? हमने यह सवाल हैदराबाद के नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के वाइस चांसलर प्रोफेसर फैजान मुस्तफा से पूछा। उन्होंने कहा,
बिल्कुल, मतलब थियोलॉजिकली बुरखा क्या है ये इस पे यूनैनिमिटी नहीं है, एक राय नहीं है कि कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए। और आज जो लोग अडॉप्ट कर रहे हैं उसमें ख्याल ये है मेरा कि पढ़े लिखी लड़कियां जो कर रही हैं वो तो एज अ मैटर ऑफ चॉइस कर रही हैं, और कम पढ़ी लिखी जो लड़कियां हैं वो अबंडन कर रही हैं।
प्रोफेसर मुस्तफा का मानना ये भी है कि जब कभी लोगों को किसी बात पर मना किया जाता है तो वो रूढ़िवादी उलेमा की बात मानने लगते हैं। ऐसे में बुरखा और नकाब पर बहस इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। इमरान कुरैशी, BBC बेंगलुरु।
अगली खबर महाराष्ट्र से, जहां गढ़चिरौली जिले में बीते गुरुवार को माओवादियों के हमले में 15 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई थी। इनमें से एक थे प्रमोद भोयर, वो गढ़चिरौली के ही रहने वाले थे। घटना के बाद BBC संवाददाता सलमान रावी प्रमोद के घर पहुंचे, सुनिए उनकी रिपोर्ट।
सिसकियां, क्रंदन, रोना, कलपना, बिलखना, ये नियति बन गई है प्रमोद भोयर के परिवार की, जो 15 जवानों के साथ मारे गए थे उस वक्त कुरखेड़ा में, जिस वक्त उनकी गाड़ी को बारूदी सुरंग के विस्फोट में उड़ा दिया गया था। वटसा के देसाईगंज का शिवाजी नगर, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर कई कहानियाँ हैं। कहानियाँ बड़ी मार्मिक हैं, क्योंकि ये चौक, जैसा आप यहाँ लिखा हुआ देख सकते हैं, प्रदीप भोयर चौक, इसका मतलब ये हुआ कि ये चौक उस नौजवान की याद में बनाया गया जो 1992 में इसी तरह की नक्सली हिंसा में मारा गया अपने और साथ सहयोगियों के साथ। और अब यहाँ पर मातम फिर से छाया हुआ है इस मोहल्ले में, क्योंकि इसी मोहल्ले का निवासी प्रमोद भोयर, ये भी उन जवानों में शामिल थे जो 15 जवान मारे गए हाल ही में जो हादसा हुआ कुरखेड़ा में। और ये कहानी बड़ी लंबी है। लंबी ये है कि लोगों के गले से नीचे नहीं उतरता कि एक ही जगह पर बार बार क्यों नक्सली हिंसा होती है, क्यों बार बार नौजवान मारे जाते हैं जो सुरक्षा बलों में काम करने वाले हैं। परिवार के लोग सदमे में हैं, सदमे में माँ हैं। माँ कहती हैं कि कमाने वाला अब घर में कोई बचा नहीं, क्योंकि बड़ा भाई वो मर गया, उससे पहले पिताजी मर गए, और अब कोई सहारा नहीं है इस घर को।
फिर झाड़ा खाली झोपलोपासी
प्रमोद की पत्नी भी सदमे से उबर नहीं पा रही हैं। लोग दिलासे दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उनको समझाने की, उनका दिल बहलाने की, लेकिन 3 महीने के बच्चे को लेकर अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। इसी परिवार में प्रमोद के जीजा जी भी हैं जो उंगलियां उठा रहे हैं इस पूरे पुलिस ऑपरेशन पर। उनका कहना है कि जब सूचना पहले मिल चुकी थी, जब ये पहले से मालूम था कि इस तरह की वारदात को नक्सली अंजाम दे सकते हैं 1 मई तक, तो पहले से सावधानी क्यों नहीं बरती गई?
इसके पहले भी हम सुने हैं कि वहाँ पत्रक मिले, जांबुरखेड़ा में उनको पत्रक मिले कि 1 मई को हादसा होने वाला है करके। फिर वो जो उसका अधिकारी था, उन्होंने सावधानी से बरतना चाहिए था, चाहे जंगल में जाते थे या अपनी जो उसकी वैन रहती वो वैन से लेके जाना चाहिए था, जिससे ये इतने सारे एक साथ 15-15 नहीं गुजर सकते थे।
किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना पति, और किसी ने अपना एक बहुत ही अच्छा दोस्त।
फैमिली में अभी एक ही ऐसा था जो ध्यान दे सकता था, वो अब नहीं रहा।
ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। गढ़चिरौली के आसपास के इलाकों के ऐसे कई आंगन हैं जहाँ पर मातम पसरा हुआ है, जहाँ के आंगन सूने पड़ चुके हैं, जहाँ गोद सूनी हो चुकी है और लोग सदमे में डूबे हुए हैं। सलमान रावी, BBC कुरखेड़ा।
और अब बात आज के अखबारों की। स्टूडियो में मौजूद हैं सिंधु वासनी अखबारों के साथ। जी सिंधु।
वात्सल्य, इंडियन एक्सप्रेस में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो हैं जस्टिस रंजन गोगोई, उनसे जुड़ी एक रिपोर्ट छपी है पहले पन्ने पर। अखबार लिखता है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने मामले की जांच कर रही आंतरिक समिति से कहा है कि वो यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला की अनुपस्थिति में जांच न करें, क्योंकि इससे सुप्रीम कोर्ट की बदनामी होगी।
जी।
रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस नरीमन ने मामले की जांच कर रही समिति से मुलाकात की और जांच को लेकर अपनी अपनी चिंताएं जाहिर की। इससे पहले जस्टिस चंद्रचूड़ ने 2 मई को एक लेटर भी लिखा था समिति को, और चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि अगर जो आरोप लगाने वाली महिला हैं उनकी गैर मौजूदगी में जांच चलती रही तो इससे न्यायपालिका की विश्वसनीयता को नुकसान पहुँचेगा, और जो यौन उत्पीड़न की शिकायत करने वाली महिला है उन्होंने खुद को इस जांच से अलग कर लिया है और सुनवाई में भी शामिल होने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा वात्सल्य, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने रफाल मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर एक ताज़ा हलफनामे में कहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा इस डील की निगरानी को दखलअंदाजी नहीं कहा जा सकता।
ये सफाई दी गई है।
हाँ, ये सफाई दी गई है। और अब बात चक्रवाती तूफान फणी की, जो बांग्लादेश पहुंच गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है कि ओडिशा सरकार ने जिस तरह तूफान आने से पहले चेतावनी जारी की और तकरीबन 12 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया, उसकी संयुक्त राष्ट्र ने तारीफ की है और अलग अलग वैश्विक मंचों पर तारीफ हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी ओडिशा सरकार
की, सोशल मीडिया में भी बड़ी चर्चा थी और बड़ी तारीफ मिल रही थी ओडिशा सरकार, खासतौर पर मुख्यमंत्री को।
जी। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक रोड शो के दौरान थप्पड़ मारे जाने की खबर भी लगभग सभी अखबारों में दिखाई पड़ रही है। केजरीवाल मोती नगर में खुली जीप में एक रोड शो कर रहे थे
जी, कल शाम का ये मामला,
शख्स ने उन्हें थप्पड़ मारा। जी। और आम आदमी पार्टी इसके पीछे BJP का हाथ बता रही है, और BJP का कहना है कि इसके पीछे खुद अरविंद केजरीवाल हैं।
लेकिन सुरक्षा में चूक की बात जरूर उठ रही है इसको लेकर। जी, शुक्रिया सिंधु वासनी अखबारों की समीक्षा के लिए।
नमस्कार भारत, शॉर्ट वेव 49, 41 और 25 मीटर बैंड, यानी 6070, 7290 और 11995 किलोहर्ट्ज़, और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
जैसा आप जानते हैं, पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर अब राजनीति की पिच पर उतर गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। BBC संवाददाता भूमिका राय ने गौतम गंभीर से बात की और सबसे पहले पूछा कि राजनीति का मैदान क्रिकेट के मैदान से कितना अलग लग रहा है।
देखिए, अलग तो है, ज़्यादा चैलेंजिंग भी है लेकिन ज़्यादा एक्साइटिंग भी है, क्योंकि क्रिकेट में आप सिर्फ एक छोटे से समुदाय को रिप्रेजेंट करते थे, क्रिकेट फ्रेटर्निटी को रिप्रेजेंट करते थे, और आप सिर्फ शायद देश के लोगों में खुशी लेके आ सकते थे, लेकिन ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर आप लोगों के बीच में उतर के लोगों की ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो मुझे ये लगता था कि या तो मैं उनमें से बन जाऊँ जो सिर्फ ट्विटर पे बड़ा एक्टिव हो या फिर ट्विटर पे एक सेंसेशन बन जाए, वो मेरा कभी भी कोई शौक नहीं था। आज मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने ये मौका दिया कि जो मैं ट्वीट्स करता था, जो भी मेरे थॉट्स हैं, उनको मैं ज़मीन पे उतर के लोगों के बीच में उतर के इम्प्लीमेंट कर सकूँ।
आपके कुछ इंटरव्यूज देखे मैंने, उसमें आपने कहा कि BJP एक विजन लेके चल रही है और हम नफरत और आरोपों की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, लेकिन साध्वी प्रज्ञा या योगी आदित्यनाथ, इन लोगों पे, इन लोगों के भाषणों को ही लेकर के चुनाव आयोग ने बैन लगाया है 72 घंटे, 48 घंटे, इस पर क्या कहेंगे आप?
देखिए, वो उनका अपना पर्सनल स्टेटमेंट्स है। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को दी है, उस लीडरशिप की इस देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे वो पुलवामा के बाद हो, चाहे वो उरी के बाद हो।
आपने पुलवामा का जिक्र किया, क्या मोदी की सेना कहना ज़्यादा सही रहेगा या भारतीय सेना, आप इस पे?
देखिए, मेरा टेक ये है कि सेना पूरे देश की है और वो पूरे देश की रहनी भी चाहिए, तो मेरा ये ओपिनियन है और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है।
आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको मौका दिया, आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो कार्यकर्ता सालों से काम करते रहते हैं, उन्हें सेलिब्रिटीज आते हैं, आज पार्टी ज्वाइन की और कल उन्हें चुनाव का टिकट दे दिया जाता है, ये उन कार्यकर्ताओं के साथ थोड़ी नाइंसाफी होती है?
देखिए, ये पार्टी का डिसीजन है और पार्टी ही ऐसे डिसीजंस लेती है। पार्टी डिसाइड करती है कि कौन उनको लगता है कि ठीक उम्मीदवार है और कौन अपना विजन लेके आ सकता है, तो ये पार्टी का डिसीजन और ये पार्टी ही आंसर आपको बेहतर दे सकती है।
नेशनलिज्म आपके लिए क्या है?
नेशनलिज्म मींस कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये देश एक है और जिस तरीके की अपॉर्चुनिटी दिल्ली में रहने वाले युवाओं को या मुंबई में रहने वाले युवाओं को मिलती है, वही अपॉर्चुनिटी, वही इंफ्रास्ट्रक्चर कश्मीर में रहने वाले युवाओं को भी मिलनी चाहिए।
आपके ओपोनेंट आतिशी मरलेना पॉलिटिशियन है और वो आपको ओपन डिबेट के लिए भी बोल चुकी हैं कि आप आएं बात करें, क्या रोक रहा है आपको ओपन डिबेट से और आप उन्हें कैसे मतलब इस चुनावी मैदान में प्रतिद्वंदी के तौर पर देखते हैं?
पहली बात तो ये है कि मेरे को ओपन डिबेट से कोई भी नहीं रोक रहा, और कल ही मैंने अपनी रैली में एक स्पीच में बोला कि अगर डिबेट करनी है तो मैं सिर्फ 4.5 दिन पुराना हूँ इस राजनीति में और हमारे जो आम आदमी पार्टी के प्रमुख हैं वो 4.5 साल पुराने हैं। मुझे 2 साल दीजिए, आधा समय दीजिए और वो डिबेट मैं उनके साथ करूँगा और वक्त भी उनका होगा, जगह भी उनकी होगी। जो ये बात करें कि मैं डिबेट से डर गया, डरा तो मैं पाकिस्तान से भी नहीं, तो इनकी डिबेट से क्या डरूंगा।
अरविंद केजरीवाल पूर्ण राज्य का दर्जा मांग रहे हैं दिल्ली के लिए और यही उनके मैनिफेस्टो में सबसे बड़ी बात और हर चुनावी रैली में चाहे भाषण में वो कह रहे हैं, पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए आपका क्या स्टेटमेंट रहेगा?
देखिए, मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी डेवलपमेंट और 4.5 साल पहले भी जो भी सरकारें रही हैं दिल्ली में उन्होंने बहुत डेवलप किया दिल्ली को। उससे पहले ना दिल्लीवासी को इतना पूर्ण राज्य के बारे में पता था, ना इतना सुना गया था, लेकिन जिस तरीके से पिछले 1.5-2 साल से पूर्ण राज्य, बिकॉज अगर आपके पास कुछ भी नहीं होता, कहीं भी छुपने को नहीं होता, तो फिर आप किसी ना किसी इशू के पीछे छुपते हैं। आपने 4.5 साल में कुछ भी नहीं किया तो अब आप पूर्ण राज्य का इशू लेके आ गए।
ये थे गौतम गंभीर और उनसे बात कर रही थी भूमिका राय। और अब खेल की खबरें।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। कल आईपीएल 12 में 2 मुकाबले खेले गए, जहां पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से और दूसरे मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने सनराइजर्स हैदराबाद को 4 विकेट से हराया। कल पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने जीत के लिए 116 रनों का लक्ष्य विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के नाबाद 53 रन की मदद से 16.1 ओवर में ही 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। दिल्ली ने अपने ही मैदान फिरोज शाह कोटला में राजस्थान को इस मैच में कहीं भी टिकने ही नहीं दिया। वैसे टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान का किला तो तभी ढह चुका था जब उसकी आधी टीम केवल 57 रन पर सिमट चुकी थी। वो तो रियान पराग ने 50 रन बनाकर राजस्थान को थोड़ा बहुत सम्मान दिलाया। वहीं कल ही खेले गए दूसरे मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को बेहद अहम मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 4 विकेट से हराया। कमाल की बात है कि हैदराबाद अपने 175 रनों का बचाव नहीं कर सकी, वो भी बेंगलोर के 3 विकेट केवल 20 रन पर झटकने के बावजूद। इनमें पार्थिव पटेल, कप्तान विराट कोहली और एबी डिविलियर्स के विकेट शामिल हैं। लेकिन इसके बाद की कहानी बदली। शेमरॉन हेटमायर और गुरकीरत सिंगमान ने, एटमायर ने 75 और गुरकीरत ने 65 रन बनाकर हैदराबाद को हार के मुंह तक पहुंचाया। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की दावत पाकर हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 175 रन बनाए। आज आईपीएल में प्लेऑफ यानी अंतिम 4 से पहले के 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मैच में किंग्स 11 पंजाब का सामना चेन्नई सुपर किंग्स और दूसरे मैच में मुंबई इंडियंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच तय करेगा कि आईपीएल के प्लेऑफ में पहुंचने वाली 4थी टीम कौन सी है। दिल्ली, चेन्नई और मुंबई अंतिम 4 में पहुंचकर पहले ही चैन की बंसी बजा रही हैं।
और चलते चलते मुख्य समाचार सिंधु वासनी से।
बीबीसी समाचार। फलस्तीन के अधिकारियों का कहना है कि गजा पट्टी पर हुए इसराइली हवाई हमलों में 14 महीने की एक बच्ची और उसकी मां समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया के मुताबिक देश के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन रॉकेट लॉन्चर और दूसरे हथियारों के परीक्षण पर नजर बनाए हुए थे। ये रिपोर्ट उत्तर कोरिया की ओर से मध्यम दूरी के हथियारों के परीक्षण की खबर के एक दिन बाद आई है। आबुजा के आर्च बिशप ने नाइजीरिया सरकार से युवाओं की यूरोप पलायन को रोकने के लिए उचित कदम उठाने की अपील की है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे तिलक राज भाटिया। आपसे अगली मुलाकात शाम के वक्त 7:30 बजे दिन भर में होगी। तब तक खबरों की जानकारी के लिए आपके साथ है bbchindi.com। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।